Ich habe das gesagt.
أعوذ
Alhamdulillah,
بالله من
وكفى
الشيطان الرجيم.
وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو کہ اپنے رب سے خشیت اختیار کرتا ہے. خشیہ ربہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے رب کا دھیان رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے. تو صحابہ کرام سارے کے سارے ایسے ہی تھے جو کہ اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے تھے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. محبت کرنے والے تھے نا اللہ تعالیٰ سے. کل جیسے آپ نے سنا تھا کہ صحابہ کرام سارا سال رمضان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور سارا دن نماز کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، ہر وقت نماز کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو بہت محبت تھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا بہترین وقت ہے، اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ یہی بات کیا کرتے تھے نماز کے بارے میں، رمضان کے بارے میں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں اور رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. تو ان صحابہ میں سے ہم ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کلاس کے اندر پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاس تو ہماری ساری کی ساری حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی تھی، اور اس میں کچھ اور بھی ادھر ادھر کی باتیں کافی ساری آپ نے سنی تھی. تو آج پھر ہم اس سلسلے کو ریزیوم کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کافی ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن میں سے ایک بات یہ کہ حضرت سعد بن وقاص نبی علیہ السلام کے ماموزاد کزن تھے، ٹھیک ہے. بنی زہرہ کے قبیلے سے ان کے والد صاحب کا تعلق تھا، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کے وہ کزن تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بھائی کی طرح ہوتا ہے. اگرچہ کہ کزنز کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی ایک بھائی والا بہن والا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو صفحہ کو ادھر بٹھا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ماموزاد کزن، ٹھیک ہے. تو اچھا، ان کی فتح، یہ ایک بہت بڑے فاتح مشہور ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، فاتح عراق و ایران، ٹھیک ہے. یہ دو میجر ایریاز تھے جو کہ اس زمانے میں، بلکہ آج بھی جو اریبین پینسولا ہے، ٹھیک ہے، جزیرہ نما عرب، تو اس کے نارتھ میں اگر آپ جائیں تو عراق بنتا ہے، اور اس کے ایسٹ کی طرف جو ہے پھر عراق کا باقی ایریا اور ایران آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ویسٹ کی طرف کیا ہے؟ شام کا ایریا، صحیح. تو شام کی فتوحات تھوڑی سی بعد میں ہوئی تھیں، پہلے جو ہے وہ عراق اور ایران کی فتوحات ہوئی تھیں. تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت صاحب بن ابی وقاص جو ہے نا، یہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ حوازن کے گورنر بنائے گئے تھے. حوازن سن کر کے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے پیچھے کی؟ حوازن، یہ لفظ کچھ یاد دلاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے. کہاں پر تھا یہ حوازن؟ ہاں، قبیلے کا تو نام ہے، اس قبیلے کا جو ایریا تھا اس کو اس کے گورنر بنائے گئے تھے نا، حوازن اور ثقیف، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. حوازن اور ثقیف، ان کے ساتھ مسلمانوں نے غزوہ حنین کری تھی، غزوہ حنین. اور یہ جگہ کون سی تھی جو زیادہ میجر مشہور جگہ ہے جہاں پہ حوادن اور ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا؟ آج بھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے سعودی عرب کے اندر، دیکھو یہاں پہ. ہاں ماشاءاللہ، احمد بھائی تو چھا گئے بھی آج. طائف، بالکل صحیح فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہ حوادن اور ثقیف کے قبیلے طائف میں رہتے تھے، اور آپ کو اگر یاد ہو یہاں پہ بھی صحیح جواب دیا انہوں نے کہ یہ جو غزوہ تھا نا، یہ بہت مشکل غزوہ تھا. اس میں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹلی فتح نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں جا کر کے فتح نصیب ہوئی تھی. تو یہ بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ تھے، और खौफनाक किस्म के लोग थे, बड़े फाइटर्स थे ये लोग ना, हवादार सकीफ के लोग। तो यहाँ के इनको गवर्नर बना के भेजा गया था। तो जब सदीक अकबर जदान का दौर खत्म हुआ, इराक की जो है वो फतूहात थोड़ी सी हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का जमाना आया, तो इनको इन फतूहात को मजीद आगे बढ़ाना था। तो एक लश्कर बनाया गया, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ने हवाजन के 1,000 जंगजू, बड़े जबरदस्त किस्म के फाइटर्स को भेजा कि भाई ये इराक की फतह के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो लश्कर बना, 1,000 तो हवाजन से आ गए ना, उनके अलावा और भी बहुत सारे, 30,000 का ये लश्कर बना। लेकिन इन 30,000 के लश्कर की सरबराही कौन करेगा, इनका लीडर कौन बनेगा, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया कि साद बिन अबी वकास ही को इसका जो है वो अमीर बना के भेजा जाए। जिन्होंने 1,000 का लश्कर भेजा ना, उन्हीं को इसका अमीर बनाया जाए। लोग तो कह रहे थे कि, बल्कि नहीं, उमर रज़ियल्लाहु तो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा लश्कर इसका अमीर बन करके, लेकिन सबने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपका मदीना मुनव्वरा के अंदर जो कि हमारा कैपिटल सिटी है, इसमें होना बहुत जरूरी है। खुदा ना खास्ता आपको सफर में कुछ हो गया या जंग में कुछ हो गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप नहीं जाने वाले, ठीक है। तो उमर अतान ने मशवरे को मान लिया, अगरचे के सारे लोग उमर अतान के नीचे थे, लेकिन जैसे पीछे भी बात हुई थी ना, पिछली क्लास में बात हुई कि तकबर का इलाज क्या है, कि एक तो अपने बड़ों की बात मान करके चले, तो इससे जो है वो इंसान का तकबर कंट्रोल में रहता है, और अगर खुद सबसे बड़ा बन जाए तो फिर तकबर, फिर भी तो तकबर हो सकता है ना कि मैं तो सबसे बड़ा हो गया, सब मुझसे छोटे हैं, सब मेरी बात मानते हैं, तो अब तकबर तो बहुत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका इलाज क्या बताया था, अच्छा किसने बताया था ये आप बता दें। जी हाँ,
अशरफ अली
हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, उन्होंने, वो थे भी हकीम, तो हकीम जो है वो बीमारियों का इलाज बताता है, तो उन्होंने तकबर का इलाज बताया कि अपने छोटों से मशवरा करे। तो उमर अजान जो है वो छोटों से मशवरा करते थे, उनके ऊपर अमल भी करते थे जब मशवरा वो सेंसिबल। तो फिर खुद नहीं गए बल्कि साद बिन अबी वक़ास को उसका लश्कर का अमीर बना दिया। ये लेकर के इस लश्कर को पहुंचे मुशराफ की जगह पर, मुशराफ एक जगह है इराक में, तो वहां पर पहुंचे और वहां पे जाकर के अपने लश्कर का एक जायजा लिया कि भाई 30,000 का लश्कर है और इसको मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा वगैरह। तो इनको ना फिर उमर रज़ियल्लाहु ने हुक्म दिया कि आप मुशराफ के मकाम के ऊपर मत खड़े हो, बल्कि आप आगे बढ़े और कादसिया के मकाम के ऊपर पहुंचे। कादसिया, ठीक है, ये कादसिया का जो मकाम है ना, ये आज के दौर में ये इराक का जो कंट्री है, द कंट्री ऑफ इराक, उसके अंदर ये आता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ही दूर फिर ईरान का मुल्क शुरू हो जाता है, लेकिन उस जमाने ये पूरा का पूरा एरिया ईरान ही कहलाता था, ठीक है। कादसिया के करीब नजफ का भी इलाका है, और ये कुछ और मशहूर भी उस जमाने के जो इलाके थे। बहरहाल कादसिया में ये पहुंचे और वहां पे जाकर के उन्होंने अपना लश्कर जो है वो सेटअप किया, इस तरह से कि इनके आगे जो है वो ईरानी लश्कर था और इनके पीछे जो थे ना वो ऑलरेडी कॉन्कर्ड एरियाज थे, जो कि मुसलमानों ने पहले से कॉन्कर किए हुए थे, वो इनके पीछे बैक पे थे अरब के पहाड़, लिखा हुआ किताब के अंदर, तो वो अरबों के ऑलरेडी कंट्रोल में वो आ चुके थे, लेकिन आगे जो है वो ईरान का लश्कर था। ईरानियों ने बहुत बड़ी एक फौज तैयार करी जिसका तादाद लिखी है 1,20,000, 120,000 स्ट्रॉन्ग, और इनका लश्कर कितना था, 30,000। तो मुसलमानों का जो है ना वो हमेशा ऐसा ही मामला रहा है, उमूमी तौर पर ऐसे ही मामला रहा है कि उनका लश्कर हमेशा बहुत कम होता था। देखिए, डबल से भी, ट्रिपल से भी ज्यादा, 30 का ट्रिपल कितना होता है, 90, ठीक है, और ट्रिपल क्या, बल्कि ये क्वाड्रुपल, 4 टाइम्स, एक बंदे के, एक मुसलमान के लिए 4 काफिर, ठीक है। तो अब ये लश्कर लेकर के यहां पे पहुंचे थे, अब वहां पे जब पहुंचे तो इन्होंने फिर एक खुतबा दिया, ठीक है, अपने लश्कर को एक खुतबा दिया लड़ाई से पहले कि अजीब, हजरत साद ने जंगे कादसिया के दिन ये वलवला अंगेज खिताब फरमाया, पहले अल्लाह ताला की तारीफ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा, जैसे कि हमारे मशायख भी खुतबा देते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू करते हैं अल्लाह ताला की तारीफ से। तो फिर उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कल बयान में भी कुदरत ने बात हुई थी, तो क्या मतलब अल्लाह ताला यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, वहां भी मौजूद है, क्या मतलब होता है इसका? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कोई बताए? अकीदे का सवाल, आपने जवाब जी,
काम
हर काम में
पे
इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर हर जगह मौजूद है का मतलब क्या नहीं है? जो आप लोगों की क्लास में बात हुई थी कि जब आप इस तरह से कहते हैं कि क्या नहीं है, इसका मतलब ये इन्वॉल्व तो है, का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे है लेकिन इन्वॉल्व भी है।
अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं है, सिर्फ शेख साहब मजलिस में नहीं है, बल्कि सब जगह इन्वॉल्व है।
हाँ, अल्लाह ताला सिर्फ जो है ना वो खाली दीनी मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कि भाई दीनी मामलात में इन्वॉल्व है, दुनियावी मामलात में इन्वॉल्व नहीं है, या मस्जिद में है मस्जिद के बाहर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन फिजिकली मौजूद ये हमारा अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला फिजिकली हर जगह मौजूद है, बल्कि अल्लाह ताला कहाँ पर है? अर्श के ऊपर है, ठीक है, अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर फिजिकली, जो भी उसकी मफहूम है, उसका मानी है, हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला की कैसी हैयत है, कैसे अल्लाह ताला की शख्सियत है, हमें नहीं मालूम, लेकिन है अल्लाह ताला अर्श के ऊपर। फिर बाकी जगहों पे मौजूद कैसे है? कि हर जगह का इल्म अल्लाह ताला के पास है और हर जगह की कुदरत अल्लाह ताला के पास, ठीक है, नॉलेज अल्लाह ताला के पास 100% है और कुदरत अल्लाह ताला के पास हर चीज की है मुकम्मल, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने लश्कर को याद दिलाया, हालांकि सारे मुसलमान ही थे ना, बोलो कोई काफिर के थोड़ी थे, सारे मुसलमान थे, लेकिन याद दहानी करा रहे हैं, वदक्किर वदक्किर फइन्न ज़िक्रा तनफउल मोमिनीन, कि याद दहानी कराते रहा करो, याद दहानी कराना मानने वालों को फायदा ही देता है, तो याद दहानी कराई कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और बादशाहत में इसका कोई शरीक नहीं है, यानी ये ईरानी बादशाह जो है ना, ये कोई अल्लाह की बादशाहत में अल्लाह का पार्टनर नहीं है, अल्लाह ताला का हेल्पर नहीं है, अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है, कि कोई अल्लाह ताला भी बादशाह है और ये भी बादशाह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला की बादशाहत जो है ना वो 100% है, बाकी लोगों की बादशाहत कैसी है कि जो कि अल्लाह ने उनको थोड़ी सी देर के लिए टेम्पोरारीली दी है, थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह ताला ने किसी बादशाह को बादशाहत दे दी है, ठीक है, और वो अल्लाह ताला वापस जब चाहेंगे, जिस वक्त भी जैसे भी चाहेंगे ले लेंगे वापस, ठीक है। अल्लाह ताला की बादशाहत टेम्पररी नहीं है, अल्लाह ताला की बादशाहत थोड़ी देर के लिए नहीं है, और अल्लाह ताला से उसकी बादशाहत ना तो कोई ले सकता है और ना उसको किसी ने बादशाहत दी थी, बल्कि उसकी अपनी है, जाती इसको कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बात के खिलाफ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला की बात के खिलाफ जो वादा कर दिया अल्लाह ने, जो अल्लाह ताला ने कह दिया सो कह दिया, कार्व्ड इन स्टोन अंग्रेजी में उसको कहते हैं, इट इज डिसाइडेड, इसके खिलाफ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब उन्होंने फिर अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर एक और अमल किया, कि सूरह काफ में वो फाजिल कराम को पता ही है कि आखिर में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, फदक्किर बिल कुरानी मैयखाफु वईद, फदक्किर बिल कुरानी, बस याद दहानी कराया कराते रहा करो कुरान को इस्तेमाल करके, ठीक है, कुरान के जरिए से याद दहानी कराते रहो, किनको? मैं या खाफू वईद, जो के अल्लाह ताला की वईद से खौफ रखता है, डरता है। तो मुसलमान जितने भी थे वो अल्लाह ताला के वादों के, भाई नहीं मानोगे तो फिर पिटाई होगी, मानोगे तो फिर तुम्हें फायदा मिलेगा, तो ये भी फिर इन्होंने कुरान के जरिए से फिर उन लोगों को याद दहानी कराई। कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरह अंबिया की, वलकद कतबना फिज़ ज़बूरी मिन बादिज़ ज़िक्री, और हमने जबूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया है, अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी, यरिथुहा इबादी सालिहून, हमने नसीहत यानी नेकी की नसीहतें करी, फिर उसके बाद हमने ये फैसला फरमा दिया कि जमीन की जो हुकूमत है ना ये तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए है, ये लिख दिया है हमने, अब अल्लाह ताला के इस फैसले के खिलाफ नहीं होने वाला है। तो कुरान मजीद का भी इस्तेमाल किया इन्होंने लोगों को नसीहत करने के अंदर, जैसे कि अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान मजीद का इस्तेमाल करें नसीहत करने के अंदर। ठीक है, हाफिज बनने का मतलब खाली ही नहीं है कि 10 जन्नत के टिकट मिल गए हम टिकट बांटते फिरेंगे। ठीक है, वो तो मिल गए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, टिकट बाकी भी रहेंगे, लेकिन अब इस कुरान मजीद को जो हमने हिफ्ज किया है ना, तो हमने कुरान मजीद के हुक्मों के ऊपर अमल भी करना है ना। उनमें से एक हुक्म क्या है, वज़क्किर बिल कुरानी मन यखाफ़ु वईद। ठीक है, हम दावत तबलीग की मेहनत भी करें और लोगों को कुरान मजीद के जरिए से फिर डराएं और उनको याद कराएं, याद दहानी कराएं। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये हुक्म फरमाते हैं, वज़क्किर बिही, इस कुरान के जरिए से याद दहानी कराओ। ठीक है, यहाँ पे बिल कुरान ही फरमाया। और एक और आयत है जो मैं भी रास्ते में बल्कि सोच रहा था और पूछा भी था किसी से, क्या है, मौलाना सार साहब ने उस दिन याद दिलाई थी, वह जाहिद हम बिही, आगे क्या है, जिहादन
कभी
जिहादन कबीरा, वह जाहिद हम बिही। ठीक है, कि उनके साथ तुम मुजाहिदा करो, उनके साथ जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम कुरान मजीद को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ ये दावत तबलीग की मेहनत करो, जिहादन कबीरा, ये बड़ी मेहनत है। ठीक है, तो कुरान मजीद को इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है, तो वो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम कुरान मजीद को खुद सीखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, याद रखेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये वादा किया है कि जमीन के वारिस तो मेरे नेक बंदे होंगे। ठीक है, जब दुनिया में नेक बंदे खत्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो काफिरों को वारिस बना देते हैं, या नेक बंदे इतने थोड़े से रह जाते हैं कि उनको किसी मुल्क का निजाम ही नहीं चला सकते, इतने थोड़े से कि वो किसी बड़ी जगह का निजाम संभाल ही नहीं सकते, तो उस वक्त भी क्या होता है कि अल्लाह ताला फिर काफिरों को हुकूमत दे देते। पिछले दिनों आप सभी को पता चल ही होगा, जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया होगा कि हम लाहौर गए थे। ठीक है, सबको पता है भी लाहौर गए थे, तो लाहौर में जो है ना, फिर हमने बच्चों को हमने कहा जी इबरतनाक चीजें दिखाते हैं ताकि उनको भी इबरत हो। ठीक है, समझाएं, जैसे हम गए थे ना आपके साथ जबले नूर गए थे, तो जबले नूर पे जाने से पहले हमने नियत करी थी कि हम क्यों जा रहे हैं जबले नूर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नियत का बड़ा फायदा हुआ था ऊपर जाकर के। सही है, उसी तरीके से शाही किला जाने से पहले भी हमने बच्चों के साथ पूछा कि हम किस नियत से यहाँ पे जा रहे हैं, तो मोहम्मद भाई को माशाल्लाह याद भी था और समझ थी, उन्होंने कहा इबरत की नियत से जा रहे हैं। ठीक है, और वाकई इबरतनाक जगह थी, इबरतनाक जगह थी शाही किला, वो तो आपके स्टैम्प्स के ऊपर उसकी तस्वीरें तो लगा देते हैं लेकिन हम इबरत नहीं हासिल करते, इतना अजीम शान वो किला है। ठीक है, और उससे पता नहीं 10 गुना बड़ा किला जो है वो देवी के अंदर है, शायद जो अहमद भाई वहां से होकर के आए तो बता रहे थे, रेड फोर्ट जो है वो इससे भी बड़ा है, लेकिन बनाने वाले किधर गए, सारे के सारे जमीन के नीचे उनके ऊपर मनो मट्टी। ठीक है, चलो ये तो हर एक के साथ होना है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी इबरत की जगह वहां पर ये थी, इबरत की चीज वहां पर ये थी कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी चीज बनाई और इतना उसके अंदर सोना चांदी जमर्रद और ऐसे ऐसे जो उसके अंदर स्टोन्स लगाए सारे, तो ऐसे ऐसे स्टोन्स लगाए और ऐसी ऐसी उसके अंदर जो है वो मार्बल की जो है वो चीजें बनाई और शीश महल बनाया जिसके अंदर ऐसी, वो गाइड बता रहा था कि इसके अंदर सूरज की जो रोशनी आती थी ना वो रिफ्लेक्ट होती थी, तो और ऐसा लगता था कि जैसे सितारे चमक रहे हैं आसमान के। ये शीश महल बनाया था शायद जहांगीर ने, शाहजहां ने बनाया था वहां पे शीश महल। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा इनको उखाड़ के फेंका, ठीक है, इनकी औलादों को ऐसा उखाड़ के फेंका कि उसी शाही किले के अंदर फिर रंजीत सिंह की हुक्मरानी हो गई। रंजीत सिंह सिख था ये, और उसने इतना मारा मुसलमानों को, इतना मारा कि मार मार के भुरकस निकाल दिया मुसलमानों को। क्यों भाई, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो जमीन का वारिस नेकों को बनाता है, जब तुमने हराम खोरी शुरू कर दी, अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दिया, ईमान से जो है वो रूगरदानी करनी शुरू कर दी, अल्लाह ताला ने सिख को तुम्हारा हुक्मरान बना दिया। ठीक है। फिर सिख ने वहां पर जो है वो कुछ चीजें तोड़ी शाही चराई के अंदर, कुछ को कुछ किया, कुछ को कुछ किया, बहुत सारी तब्दीलियां रणजीत सिंह ने जो है वो वहां शाही चराई के अंदर आकर लेकर। फिर रणजीत सिंह का भी दौर खत्म हुआ, फिर ब्रिटिश फोर्सेस आ गई वहां पर, और ब्रिटिश ने आकर के फिर जो है वो शाही चले की जो है ना वो ईंट से ईंट जो है वो उल्टी सीधी जितना बजानी थी उतनी बजाई उन्होंने, ईंट से ईंट बजाने का जितना बजानी थी उन्होंने बजाई। ठीक है, तो वो अब उन लोगों की बस यादें रह गई हैं कि हाँ अकबर ने ये बनाया था, फिर जहांगीर ने ये बनाया था, फिर शाहजहां ने ये बनाया था, फिर औरंगजेब ने, औरंगजेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया था रहमतुल्लाह अलैह, वो एक नेक आदमी निकल आए थे बीच में से, फिर उनके बाद बाकी सारे के सारे फिर वही उल्टी सीधी हरकतों के अंदर। तो शाही चला जो है ये इबरत की जगह है, ठीक है, मैं ये खाफू वईद, ये इबरत की जगह है, तो हमें इन चीजों को देख करके इबरत सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए, हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो उनका भाई जमीन के वारिस तो मेरे नेक बंदे होंगे, तो तुम्हारे रब ने, उन्होंने कहा सात बन भी वकास अताना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ये देने का वादा किया हुआ है, और 3 साल से अल्लाह ताला ने तुम्हें इस जमीन को इस्तेमाल करने का मौका दिया हुआ है, 3 साल से मुसलमान वहीं पर थे, यानी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिंदगी के 225 साल थे ना, तो उसमें आखिर में शुरू हो गई थी ये इराक की फतुहात, और ये उमर फारूक खत्तान के भी इब्तदाई दौर में जारी थी, तो ये 3 साल से मुसलमान वहीं पर स्टेशन थे कादसिया से पीछे वाले एरियाज के अंदर। तुम खुद भी इसमें से खा रहे हो और दूसरों को भी खिला रहे हो, यहाँ के रहने वालों को तुम कतल कर रहे हो, यानी तुमने इनको कतल करके अपनी ये जगह हासिल करी है, उनका माल समेट रहे हो, गर्ज है कि गुज़श्ता तमाम जंगों में तुम्हारे नामवरों ने उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, बड़ी उस जमाने की ये क्या थी, सुपर पावर, ईरान क्या थी उस जमाने की, सुपर पावर थी, तो मुसलमानों ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया था अब तक। अब तुम्हारे सामने उनका ये बहुत बड़ा लश्कर जमा होकर के आ गया, 120,000 का लश्कर अब तुम्हारे सामने आया है, पहले इतना बड़ा लश्कर नहीं आया था, तुम अरब के सरदार और मोअज़्ज़ज़ लोग हो, और तुम में से हर एक कबीले का बेहतरीन आदमी है, तो इन्होंने फिर मुसलमानों के वो अल्लाह का खौफ दिलाने के बाद फिर उनकी तारीफ भी करी कि तुम बेहतरीन, यू आर द चोजन पीपल फ्रॉम योर ट्राइब्स, ठीक है, और तुम्हारे पीछे रहने वालों की इज्जत तुमसे ही वाबस्ता है, ठीक है, कि तुम ऐसे लोग हो कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर ट्राइब्स, ठीक है, तो तुमने अगर डरपोकी दिखाई और भाग गए तो तुम्हारे पीछे के ट्राइब वालों की क्या इज्जत रह जाएगी, हमारे कबीले का बंदा जो है वो डरपोक था भाग गया, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर खौफ भी दिला रहे, डरा भी रहे, ठीक है, कि तुम भागे ना तो तुम्हारे कबीले की इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि अरबों के अंदर जैसे हमारे माशाल्लाह पठानों के अंदर बहुत ज्यादा है आपके कबीले की इज्जत और कबीले का वकार वगैरह, अरबों के अंदर उससे भी ज्यादा बढ़ करके, ठीक है, अगर दुनिया की बेरगबती और आखिरत का शौक इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या फरमा रहे हैं, ये कंडीशन बता रहे हैं, ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुम्हें दुनिया की बेरगबती और आखिरत के शौक से मिलेगी, ठीक है, बम बनाने से नहीं मिलेगी, खाली बम बाद में बनाते रहना, बेशक उससे मना नहीं कर रहे बम बनाने से, लेकिन पहले तुमने क्या करना है, दुनिया से बेरगबती और आखिरत का शौक, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या है, किसी को याद है, इसका ऑपोजिट ये दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का खौफ, आखिरत का खौफ नहीं बल्कि आखिरत का क्या था वो, कराहियत,
दुनिया
इसको क्या कहते हैं हदीस में, इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वाहन, ठीक है, वहन तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला डाल देगा, और वो वहन सहाबा को भी नहीं पता था कि ये वहन का मतलब क्या होता है, तो पूछा माल वहन या नबी रसूल या रसूल, फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत, कि मरना नहीं, नहीं मरना इज टू डिफिकल्ट, मरना नहीं है, तो उस जब ये तुम्हारे दिल में आ जाएगी तो फिर अल्लाह ताला ऐसा कर देंगे कि तुम जैसे के दस्तरखान के ऊपर खाने की तरह पड़े हुए होगे और लोग आएंगे और तुम्हें खाएंगे खाएंगे खाएंगे, ठीक है, इसकी रीजन क्या बताई, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत, और इसका ऑपोजिट क्या है कि दुनिया से बेरग़बती और मौत को गले लगा लेना, कि भाई मौत तो एक ब्रिज है, एक पुल है, कि जिससे फिर अपने परवरदिगार से मुलाकात होती है। ठीक है, अल मौत जसरुन यूसरुल हबीबा इलल हबीबी। ठीक है, जो हबीब को हबीब से मिला देता है। तो इनको ये बातें इन्होंने याद दिलाई और ये भी बता दिया कि भाई कामयाबी जो है ना वो तो इससे मशरूत है, इसके बगैर तुम्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। दुश्मन के साथ लड़ने से मौत करीब नहीं आ जाती। ठीक है, मौत तो आती है, लड़ने की वजह से नहीं आती। मौत तो जिस वक्त मुकर्रर है उस वक्त वो आएगी, लेकिन अगर तुम बुजदिल बनोगे ना और तुमने कमजोरी दिखाई तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम अपनी आखिरत बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो अजीब ऐसा उन्होंने खिताब फरमाया अपने लोगों को। फिर उसके बाद उन्होंने 14 लोगों का ना एक ग्रुप बनाया और उनको एम्बेसडर बना करके शाहे ईरान की तरफ भेजा। ठीक है, तो वहां पे वो गए, उनके जो थे गालिबन जो लीडर थे उनका नाम अमर बिन मादीकर। मादीकर जो है वो एक जगह है लबनान के अंदर, आज भी मौजूद है। तो वो अमर बिन मादीकर अपने जगह के नाम से वो मशहूर थे। तो ये लोग वहां पे गए और वहां पे जाकर के उन्होंने उनको ईरानियों को, ईरान के बादशाह को दीन की दावत दी और कहा कि भाई तुम हमारा इस्लाम कबूल कर लो, ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये तुम्हारा भी है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा नहीं है, तुम्हारा भी है, अल्लाह हमारा नहीं है सिर्फ, बल्कि अल्लाह तुम्हारा भी है, तो उसको तुमने भी राजी करना है जिस तरह हमने राजी करना है। ठीक है, इस्लाम हमारे लिए जिस तरह फायदे की चीज है उसी तरह तुम्हारे लिए भी फायदे की चीज है। ठीक है, तो तुम मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, फायदा ही फायदा, मजे ही मजे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम जो है ना फिर हथियार डाल दो और हमें टैक्स देना शुरू कर दो, जिसको जिजिया देना कहते हैं। ठीक है, आज चले ना जरा अमरीका जाके ट्रम्प को बोलते हैं मानो वरना हमें टैक्स दो, या तो इस्लाम लेकर के आओ या टैक्स दो। ठीक है, किसी के मजाल नहीं कोई काम कर सके, ईमान नहीं है। ठीक है, यह बहुत ही कमजोर है। सहाबा उस जमाने में सहाबा की हैसियत ऐसे ही थी कि जैसे कि आज के, किसी ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी कि ये नहीं कि पाकिस्तान और अमरीका, नहीं, सहाबा और ईरान इज लाइक पाकिस्तान एंड अमेरिका। नो, पाकिस्तान के बाद तो बहुत कुछ है, बहुत चीजें बनाई हुई हैं और भी बनाते रहते हैं। उस बंदे ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, पता नहीं कौन थे वो, लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि इस जमाने में उसकी जो बेहतरीन मिसाल है ना, मुसलमानों की बेहतरीन मिसाल इस जमाने में, कि मुसलमानों जैसे मुसलमान माइट वाइज थे वैसे इस जमाने में कौन लोग हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर जो इग्लूज के अंदर इस्किमोज रहते हैं ना, इस्किमोज ही कहते हैं ना, ठीक है, इग्लूज के अंदर जो लोग रहते हैं, उस जमाने में मुसलमान ऐसे थे। ठीक है, तो इस्किमोज जो होते हैं वो ताकतवर तो होते हैं, उनको सख्त तो वो होते हैं बॉडीली, तो वो सख्त होते हैं ना, जब भी तो वो नॉर्थ पोल के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज के जमाने में वो लोग जैसे हैं ना वैसे जो है उस जमाने में सहाबा करम हुआ करते थे। ठीक है, और इसके मुकाबले में जो उस जमाने की जो सुपर पावर्स होती थी वो आज की सुपर पावर्स की जैसे। ठीक है, लेकिन उनका बस उनकी शान ये थी कि उनकी जो है ना वो दोस्ती लगी हुई थी किसके साथ, सुप्रीम पावर के साथ। किसके साथ, सुप्रीम पावर के साथ, जो कि है अल्लाह। ठीक है, तो उनकी दोस्ती जो कि सुप्रीम के साथ थी, अब दुनिया के छोटी छोटी सुपर पावर्स, ये सारी निकी निकी छोटी छोटी सुपर पावर्स, इनके लिए कोई मसला नहीं था। वो आ करके ऐसे उनको कहते थे, जा भाई मानो नहीं तो फिर हमें टैक्स दो। ठीक है, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐसे ही देना, जा करके फिरौन के दरबार के अंदर जा करके बोल रहे हैं मानो मेरी बात, नहीं मानते तो फिर, ऐसे बात करी थी वो। फिरौन भी उस जमाने में ऐसा ही था जैसा कि आज का कोई सुपर पावर हो। तो इन्होंने वो 14 बंदे भेजे और वहां पे जाकर इन्होंने ऐसी बात करी, उसने कहा कि चलो चलो मियाँ कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, नहीं मानता मैं तुम्हारी बात। ठीक है, तो अब अगली बात इन्होंने क्या करी, अगली बात जो है ना वो उससे भी ज्यादा बढ़ करके करी। अगली बात ये करी कि तुम अगर बच्चों नहीं मानोगे ना, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें पहले से बताया है, तुम्हारा मुल्क जो है ना वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी जो बात है ना वो तो हो के रहेगी, हमें उस पर तो जरा बराबर भी डाउट नहीं है। बस हम हमें ये नहीं पता, या हमें ये उसकी वो नहीं है कि तुमसे लड़ करके होगी या तुम खुद जो है वो हथियार डाल दोगे, इस वजह से हम तुम्हारे पास आए मैं प्रपोजल देने के लिए। भाई सीधी तरह मान जाओ, ठीक है, सीधी तरह नहीं मानोगे उल्टी तरह से तो बच्चों तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हमें बता चुके हैं और उनकी बात जो है ना वो झूठी नहीं होती। ये एतमाद था, इसको ईमान कहते, इसको ईमान कहते, नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर एतमाद, ठीक है। तो इन्होंने फिर ये बात करी, उसके लिए ये बात और भी ज्यादा बड़ा जोक थी। ये कौन, क्या तुम बोल रहे हो मुझे सारी चीजें, ठीक है, तुम्हारे नबी कौन है भाई, तुम्हारे नबी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा, कि एक बंदे से कहा कि जाओ जरा जाकर के ना मिट्टी भरा एक टोकरा लेकर के आओ। तो बंदा गया जाकर के, एक टोकरे के अंदर मिट्टी भर करके वो लेकर के आया। उसने गुलाम से कहा कि ये जो अमर बिन मादी कर्ब है ना, जो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके सर के ऊपर ये टोकरा रखो और इनसे कहो जाओ वापस तुम सारे के साथ, ठीक है ना। तो वो अमर बिन मादी कर्ब अपने बाकी 13 साथियों के साथ वापस आए लश्कर के अंदर, और साथ में नबी वकास उनको खुशी खुशी बताने लगे कि मुबारक हो अमीर साहब, अल्लाह ताला ने हमें इनका मुल्क अता कर दिया, बल्कि उन्होंने खुद अपना मुल्क हमें अता कर दिया, ठीक है, यानी अपने मुल्क की मट्टी उठा करके हमें दे दी, गोया के सिंबॉलिकली इन्होंने अपना मुल्क हमारे हवाले कर दिया, चले अब लड़ाई की तैयारी करें, ठीक है। तो ऐसे ये लोग हुआ करते थे, अजीब है ना। तो आप लोगों से ही पूछता हूँ, कौन थे वो जो ताबी थे जो कि हजरत उम्मे सलमा की बांदी के बेटे थे,
हसन बसरी
हजरत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो वो ना अपने दौर के लोगों से कि जब जब बयान करते थे तो वो कहते थे कि तुम लोगों ने सहाबा को नहीं देखा ना, मैंने सहाबा को देखा है, ठीक है, मैंने सहाबा को देखा है, तुमने नहीं देखा। अगर तुम सहाबा को देख लो ना तो तुम कहोगे ये पागल है, तुम कहोगे कि ये पागल हो गए, लेकिन अगर सहाबा तुम्हें देख ले ना तो तुमको ये कहेंगे कि तुम तो काफिर हो चुके हो, तुम तो वो लोगों को नसीहत करते थे, तो इस तरीके से समझाते थे बात, नहीं भाई अपने ईमान को मजबूत करो, सहाबा के जैसा ईमान पैदा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सहाबा ऐसे थे, नबी अलैहिस्सलाम से सही उन्होंने जो है ना वो तरबियत पाई थी। तो अब उसके बाद जो है उन्होंने लड़ाई की तैयारी शुरू करी, और फिर ने 3 दफा जो है वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, और चौथी मरतबा फिर अटैक, ठीक है। तो ये इस तरह से उनकी होती थी कि भाई 3 दफा जो है वो नारे तकबीर करते थे, और ये नारे तकबीर जो था ये फितरे वाला नहीं था, ये वो वाला नहीं था जिसका शेर उन्होंने बताया, तो ठीक है, ये हकीकी नारे तकबीर था। हमारा नारे तकबीर क्या होता है, नारे तकबीर हमारे होता है नारे तकबीर, वो नारे तकबीर था, सही है। तो फिर उसके बाद अटैक किया। अच्छा, साथ में वकास जो थे वो उस वक्त बहुत बीमार भी थे, उनको ना शियाटे का पेन हुए हुए थे, अरको निसा उसको कहते हैं, बहुत ही यानी इस ताई के एरिया में शदीद किस्म का पेन होता है, अब आप कुछ कर नहीं सकते उस पेन का ना। तो वो इतना शदीद पेन था कि वो खुद लड़ाई के लिए आगे नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने हजरत खालिद बिन अल्तफा को जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा, और ये पीछे बैठे हुए ये क्या करते थे कि देखते थे कि अच्छा कोई स्ट्रैटेजी चेंज करनी है कुछ, तो वो बकायदा कागज के ऊपर लिखते थे, ये भी पढ़े लिखे थे, ये लिखते थे और उसका गोला बनाते थे और यूं करके खालिद के पास फेंकते थे, ठीक है, खालिद में अरतफा। तो फिर वो खोलते थे और उसके ऊपर फिर अमल करते थे, ये पीछे जरा ऊंची जगह पे बैठे थे, जैसे बदर के मकाम पे, बदर की जंग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम भी ऊंची जगह पे बैठे थे ना, वहां से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते, तो ये भी इसी तरीके से ऊंची जगह पर बैठ के वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब इस लड़ाई की कुछ और तफसीलात हैं, तो टाइम चुके मुकम्मल हो गया है, तो वो हम फिर इंशाल्लाह रमजान मुबारक के बाद पढ़ के फिर साथ में वकार सुनाने का सिलसिला मुकम्मल करेंगे। रमजान मुबारक आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वहां पे पहुंचा देंगे सेहत के साथ आफियत के साथ, तो हम खूब जी भर करके रमजान मुबारक के फायदे उठाएं, जैसे कल आप लोगों ने कुछ बरकात और फजाइल इसके पढ़े थे, उसके मुताबिक खूब इबादत करने की कोशिश करें, और दुआओं में अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को मांगे, ठीक है, दुआओं में अल्लाह ताला से अल्लाह को मांगे, ए अल्लाह मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, ठीक है, मुझे आपका कुर्ब चाहिए। अल्लाह ताला से अल्लाह को मांगेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ दे देंगे, बाकी सब कुछ भी, कल जैसे बात हो रही थी, बाकी सब कुछ भी अल्लाह ताला पूरा पैकेज देते हैं फिर। लेकिन अल्लाह ताला फिर पहले हमारे दिल को चेक करते हैं, ठीक है, दिल को चेक करते हैं कि ये जो जुबान से मांग रहा है क्या वाकई ये मुझे ही मांग रहा है या बस ऊपर से कुछ, जिस तरह दुनिया में लोगों को हम खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं, चलो जी ये खुश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन असल में हम नहीं चाहते उनको खुश करना, असल में नहीं चाहते, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला तो फिर दिलों का हाल जानते हैं ना, तो वो फिर जुबान से सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम जुबान से ऐसी बात कहें, लेकिन अल्लाह ताला दिल भी चेक करते हैं। तो फिर इस वजह से दिल को भी अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए खाली करके फिर हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को मांगे, यानी गोया कि आपने, जैसे आपको दूध चाहिए या आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज चाहिए, तो आप एक प्याला लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो अब वो जो आप प्याला लेके जा रहे हैं कि जी मुझे दूध चाहिए, मुझे शहद चाहिए, मुझे आपकी बेहतरीन कोई ड्रिंक चाहिए, तो अब वो देने वाला कहे कि यार इस प्याले के अंदर तो ये भरा हुआ है, मैं इस पर डालूंगा तो जो मैं डालूंगा ना वो तो गिर जाएगा, अंदर ही ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, तो इस वजह से फिर जब किसी से कुछ लेने के लिए जाते हैं तो फिर प्याले को खाली करके लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर फिर वो चीज आ सके, ठीक है, तो उसी तरीके से जब अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए अल्लाह से मांगते हैं ना तो फिर दिल के प्याले को दुनिया की मोहब्बत से खाली करना होता है, जब खाली कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर अपनी मोहब्बत को भर दे, ठीक है, अब हम कैसे खाली करें, इतना मुश्किल काम, मामूली काम है, दिल की दुनिया से लग, दुनिया की मोहब्बत दिल से खत्म कर देना, खाली कर देना, ठीक है, तो फिर इसका जवाब दे करके फिर आप लोग क्लास से फारिग हो जाए, ठीक, इतना मुश्किल काम है दिल से दुनिया की मोहब्बत को बिल्कुल निकाल देना, उसको खाली कर देना ताकि अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर आ जाए, तो फिर आप क्या करें, मायूस हो जाए, छोड़ो यार इट्स टू डिफिकल्ट, चलो कुछ और काम करते हैं, आपने पहले हाथ खड़ा किया था तो आपसे पूछता,
ऐसा तो बहुत
इन्होंने जवाब दिया कि उसका आसान हल यह है कि हम तौबा कर लें, तो तौबा करने से जो है वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक बिल्कुल सही जेन्युइन और सही जवाब है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर अफान भाई से जरा पूछते हैं,
दुनिया से सिर्फ हम अल्लाह की खातिर बाकी
मैं तो कह रहा हूँ ये इतना आसान काम नहीं है, तो सबसे मुश्किल काम है, तो आप क्या करें ये तो सबसे मुश्किल काम है जी आरव भाई, ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है कि भाई हमारे लिए मुश्किल है ना, अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करना ये हमारे लिए मुश्किल काम है, क्या अल्लाह ताला का कंट्रोल हमारे दिल के ऊपर नहीं हो सकता, क्या अल्लाह ताला का, बल्कि अल्लाह ताला का ही कंट्रोल है हमारे दिल के ऊपर, तो अल्लाह ताला से कहें ए अल्लाह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है लेकिन आपके लिए तो मुश्किल काम नहीं है ना, तो आप मेरे दिल को साफ कर दीजिए, ठीक है, आप मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल, ठीक है, तो मोहब्बत मांगने से पहले अल्लाह ताला की मदद मांग लेंगे ना तो फिर मोहब्बत ही मिल जाएगी, आप ये कह रहे थे, ठीक है, चल अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत में से वाफिर हिस्सा अता फरमाए, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल ऑनलाइन लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम।
Recording stopped.